ओम शांति। सभी को बाबा की मुरली संडे की याद तो नहीं होगी, बहुत समय हो गया, लेकिन उसमें राज पद के संस्कार किस तरह से आएंगे, चार बातें बताई थी, बहुत पावरफुल। और ये बड़ी हुई ये गति है कि उन चार बातों के आधार से राजाई संस्कार आएंगे। डॉक्टर साहब आप न बोलना, माताओं को याद है चार बातें? ठीक बोला, एक तो बोल दिया सत्कारी, ठहरो माताएं बताएंगी पहले, माताओं के सिर पे कलश है ना। हाँ, दूसरा नहीं, निराकारी निरहंकारी सत्कारी अधिकारी, पहले बताया अधिकारी, फिर सत्कारी, फिर निराकारी और निरहंकारी, चार पाए हैं ये। जिनके पास ये होंगे उन्हें राजाई मिलेगी, ये नहीं कि जो यहाँ राजा होंगे उन्हें राजाई मिलेगी, भाई जो यहाँ जोन इंचार्ज बन गए वो सब राजा बनेंगे, जो सेवाधारी रह गए वो पीछे रह जाएंगे प्रजा में, ऐसा नहीं। माताओं में है किसी को राजपद पाने की इच्छा? हाथ उठाना जरा उमंग से। अच्छा, हाय तो सारे ही राजा बैठे। अच्छा, तो ये चार चीजें चाहिए। जब बाबा साकार में थे तो क्योंकि किसी से समझाना नहीं आता था, विरोध बहुत था, तो बाबा कहते थे प्रजा नहीं बनाओगे तो राजा कैसे बनोगे, ताकि सभी को ज्ञान देने की उमंग हो सके। मंदिरों में जाओ, यहां जाओ, ट्रेन में सेवा करो। फिर समय बीता, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर तुमने प्रजा तो बहुत बना ली लेकिन तुम राजा न बने, तो तुम्हारी प्रजा जिसको मन से राजा मानती है तुम सब उसकी प्रजा हो जाओगे, सब उसकी प्रजा हो जाएंगे, राजा दूसरा बन जाएगा। और आगे बढ़े, बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। 69 की अगर मुरलियां पढ़ें तो राज पाने वालों की क्वालिफिकेशन क्या होगी बहुत स्पष्ट था। असरत्नों की एक क्वालिफिकेशन बाबा ने बहुत सुंदर बताई जो निराकारी स्थिति से जुड़ी है, जो सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे वो असरत्न होंगे, उनकी मृत्यु भी सर्विसेबल होगी, मरने पर भी उन्हें सर्विस का मेडल प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छी मुरलियां 69 दिसंबर की दो मुरलियां हैं। ऐसा दीदी सेकंड में हो गए जो बहुत इसके अभ्यासी होंगे, अंत में वो एक सेकंड में ऐसा दीदी होके मुक्तिधाम में जाएंगे। और जो इसके अभ्यासी नहीं होंगे, जिनको कहीं भी मोह ममत्व है, चाहे मनुष्यों में है, चाहे वस्तुओं में है, पद पोजीशन में है, अपनी सेवाओं में है, वो उन्हें बांध लेंगी चीजें और देह छोड़ने में बहुत कष्ट होगा। आज भी था शायद मुरली में, पुनर्जन्म हो जाएगा, हाँ गर्भ जेल में चले जाएंगे, और ये सजाएं बहुत भारी होंगी, उस समय की सजाएं और भारी होंगी, क्योंकि अंत का काल होगा और अंत में सारे हिसाब किताब सबको चुकतू करने होंगे, तो गर्भ जेल में जाकर वो जेल भयानक जेल हो जाएगी जिसमें आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। तो पहली स्थिति है अधिकारी। किस किस पे अधिकार? पॉइंट्स निकालेंगे सभी। कर्मेंद्रियों पे अधिकार, लिख लो भाई जिसको लिखना। दूसरा मन बुद्धि संस्कार यानी स्वराज्य अधिकारी, स्वयं पर अधिकार। तीसरा प्रकृति पर अधिकार, माताएं बताएंगी किस पर अधिकार, बोलो। प्रकृति आ गई, हाँ माया भी, ठीक बोला आपने। सभी विकारों पर अधिकार, कंट्रोल में आ गए सब। पांचवा, सर्व शक्तियों पर अधिकार। अब पीछे वाले बताएं, छठा, सर्व खजानों पर अधिकार। सातवा, आठ कर लेते हैं पूरे, थोड़ा बड़े बड़ी बात करो, शक्तियों का आ गया शक्तियों पर अधिकार हो गया, और बड़ी बात करो, बाबा पर अधिकार, भगवान पे भी अधिकार, और आठवां क्या होगा? वो तो मिल ही जाएगा, बाबा के सभी वरदानों पर भी अधिकार। आठ अधिकार हो गए, ये अधिकारी स्थिति है। इसमें सबसे पहली सर्वश्रेष्ठ है बीज है, स्वयं पर अधिकार, अपने मन बुद्धि पर अधिकार, और इसके बारे में आत्मा को ये रियलाइज करने की जरूरत है। ध्यान दें आप इस बात पर, एक दिन में नहीं होती ये बात, गहराई से स्वीकार करें और रियलाइज करें बाबा का महावाक्य, तुम्हारे पास मन को कंट्रोल करने का अधिकार है। मन की कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे पास है। मन हमें कंट्रोल करे या हम मन को कंट्रोल करें, शक्तियां हमारे पास है, मन के भी राजा हम हैं। जो बहुत अभ्यास कर लेंगे स्वराज्य अधिकारी का, मन बुद्धि उनके अधिकार में चलने लगेगी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। प्रकृति पर अधिकार, इसका क्या अर्थ है? पांच तत्वों पर। इसका बहुत सिंपल सा हम अभ्यास करेंगे। जो आत्माएं प्रकृति पति बन जाते हैं, मालिक हो गए ना, उनका प्रकृति पर अधिकार। और प्रकृति पति माना उसकी हमारी प्रैक्टिस है, जब चाहें देह से डिटैच हो जाएं, देह हमें बांध नहीं रही है, हम इसे डिटैच हो जाएं, यह है प्रकृति पर अधिकार। प्रकृति में, प्रकृति का दूसरा अर्थ क्या होता है? भाई इसकी प्रकृति ऐसी है, नेचर, नेचर पर भी अधिकार। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, बाबा पर अधिकार करें इस पे चिंतन और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। भगवान पे अधिकार, कहां से शुरू होगी ये बात? नहीं, और बोलो, ये बात शुरू होगी कि वो मेरा है। अधिकार किस पे होता है? अपनों पर। जो अपने नहीं है उस पे तो अधिकार ही नहीं, सब जगह है। अगर हम उससे अपनापन बढ़ाते चले, वो मेरा है कहने की बात नहीं है, कह तो सभी देते हैं मेरा बाबा, लेकिन फिर बहुत सारे मेरे भी होते हैं ना, बहुत सारे मेरों की संख्या बहुत बड़ी है, धन संपत्ति भी मेरी, छुपा हुआ माल भी मेरा, देख लो अलग अलग सबके पास जो समर्पित हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ है जो मेरा, गहराई से मेरा है, जो मेरा बाबा का अनुभव नहीं करने देता। एक ही चीज होगी यहां, या तो मेरा बाबा या मेरा यहां, यहां जितना मेरापन समाप्त उतना ही बाबा से मेरेपन की गहरी अनुभूति होगी। तो इस अनुभूति को बहुत बढ़ाएंगे, भगवान मेरा है, पहले मुझ पर उसका अधिकार है। किस पर? मुझ पर, पहले मुझ पर उसका अधिकार है। अगर वो मुझे डांटे भी तो बुरा लगेगा? अच्छा, खुशी होगी? बाबा डांटे तो खुशी होगी? हाँ, तो बाबा का भी हम पर अधिकार, हमारी हर चीज पे अधिकार। बाबा का हम पर अधिकार है तो और किसी का अधिकार नहीं हो सकता, ये भी गहरी बात होती है। फिर हमारा बाबा पर अधिकार, ये एक साइड से नहीं होगा, पहले बाबा पर हमारा, बाबा का हम पर अधिकार। मुरलियों में जो कुछ वो कहता है बहुत अधिकार से अपने बच्चों को कहता है, हमें भी उसी भाव से उसे स्वीकार करना है, तब हम फील कर सकते हैं उस पर भी हमारा अधिकार है। हम उसे भी कुछ अधिकार से कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम? नहीं, जहां हमें कठिनाई हो, जहां हम कुछ न कर पाए, जहां हमारी शक्तियां काम न करें, जहां हमारा वश न चले, हम बाबा को अधिकार से कह सकते हैं ये आपको करना है। प्रकृति पर भी अधिकार, हम प्रकृति को भी अधिकार से कह सकेंगे, यहां क्या करो, बारिश कर दो जहां नहीं हो रही, और जहां ज्यादा हो रही है यहां आप शांत हो जाओ। कहीं आग लग गई, हम प्रकृति को आदेश दे सकेंगे अब शांत, कहीं आग लगा नहीं सकेंगे, बुझा सकेंगे, आग लगाने वाले तो पहले ही बहुत मिल जाएंगे, हम बुझा सकेंगे। तो प्रकृति पर भी हमारा अधिकार, बाबा पर भी हमारा अधिकार, ये बहुत बड़ी चीज हो जाएंगी दोनों, आध्यात्म की, हमारे ज्ञान योग की सबसे ऊंची अनुभूति, कि भगवान पर भी हमारा अधिकार और प्रकृति पर भी हमारा अधिकार, और तीसरा ऐसे ही शक्तियों पर भी हमारा अधिकार, जैसे शास्त्रों में दिखाया है। मैं आपको एक ही उदाहरण बताऊं जिससे आप भली भांति परिचित हैं। राम को राज तिलक होने लगा, अभी ऊपर विष्णु और लक्ष्मी जी बात कर रहे हैं कि तुम्हें तो भेजा था असुरों का संहार करने, ये तो राज तिलक हो रहा है। तो विष्णु जी क्या करते हैं, सरस्वती को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं सरस्वती हाजिर, और उसे क्या आदेश दिया कि जाओ मंथरा की जीप पर बैठ जाओ, और सरस्वती ने वो काम करके उसको वनवास दिलाया ताकि वो असुरों का संहार कर सके, क्योंकि सारे असुर तो वनों में थे और लंका में थे। तो ऐसे ही हम भी शक्तियों का आह्वान करेंगे, शक्तियां हाजिर हो जाएंगी और हम उनको आदेश दे सकेंगे, यहाँ ये काम करो, वो बाध्य होंगी हमारा सुनने के लिए, ये भी बहुत बड़ी स्थिति है। तो ये अधिकारी स्थिति छोटी नहीं है, चाहे स्वयं पर अधिकार हो, चाहे बाबा पर हो, चाहे प्रकृति, चाहे शक्तियां, चारों ही बहुत पावरफुल स्थितियां हैं। इसलिए राजाई संस्कार माना बहुत शक्तिशाली जो होंगे, बहुत पवित्रता के जिनमें संस्कार होंगे, सबको बहुत सुख देने के संस्कार होंगे, वही तो राजा बनेंगे ना। निराकारी की बात बाबा ने की, क्या नाता है निराकार से और राजाई पद का, राजाई संस्कारों का नाता है निराकार से, बोलो। देखो निराकार माना दूसरे शब्दों में संपूर्ण आत्माभिमानी, और संपूर्ण आत्माभिमानी का अर्थ है आत्मा, आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप, और जब आत्मा सातों गुणों का स्वरूप बनती है तो उसमें आगे की बात भी होती है, आत्मा सुख स्वरूप है, इससे हमें स्वयं को सुख मिलेगा, लेकिन क्या होगा आगे, राजाई पद माना सबको सुख देने वाले। सफल राजा वही हैं जो अपनी प्रजा को संपूर्ण सुख देते हों, जो बहुत केयर करते हों। राजा माना माता पिता, केयरिंग नेचर, वो शक्तिशाली भी हैं, आत्मा शक्ति स्वरूप भी है, तो उनके अंदर शक्तियां और निर्भयता पूरी आ जाएगी। आत्मा शांत स्वरूप है तो स्वयं में भी शांति आएगी और शांति फैला भी सकेंगे। उनके मुख के वचन बहुत मधुर हो जाएंगे। आत्मा प्रेम स्वरूप है तो सबको प्रेम दे सकेंगे, चाहे वाचा के द्वारा चाहे व्यवहार के द्वारा। तो निराकार स्थिति का ये गहरा नाता है राजाई संस्कार से। इस पे सभी चिंतन करेंगे। और राजाई संस्कार जो प्रसिद्ध हैं, राजा को बहुत चरित्रवान होना चाहिए। ये चरित्र कहां से आएगा? हाँ, निराकार स्थिति से हम चरित्रवान बनते हैं। क्यों? आत्मा की एक स्थिति पवित्र स्वरूप भी है और पवित्रता ही श्रेष्ठ चरित्र का बीज है। जिसके पास जितनी पवित्रता है वो उतने ही चरित्रवान हैं। जो जितने निराकार हैं वो उतने ही शक्तिशाली हैं। निराकार होने से बुद्धि भी स्वच्छ हो जाती है। तो राजा को चाहिए बहुत बुद्धिमान, राजा को होना चाहिए बहुत शक्तिशाली, राजा को होना चाहिए बहुत चरित्रवान, राजा को होना चाहिए बहुत सुखों का दाता, प्रजा की केयर करने वाला, जो प्रजा के लिए डेडिकेट है, समर्पित है, जिसका सब कुछ प्रजा के लिए है। बहुत सारे राजा हुए भारत में, बड़े बड़े भी हुए, सम्राट भी हुए, जो अपनी सारी धन संपत्ति हर 5 साल में प्रजा को दान कर देते थे। हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा, भारत के सम्राट हुए 13वीं सदी में। ये बस अंतिम सम्राट थे सब, उज्जैन इनकी राजधानी थी। बहुत समय भारत की राजधानी उज्जैन भी रही और उसके आसपास, फिर बाद में आके आगरा और फिर दिल्ली ये सब हुई, मगध पटना भी रही, उसका नाम पाटलिपुत्र होता था तब। तो हर्षवर्धन ऐसा सम्राट था जो हर 5 साल में अपनी संपूर्ण संपत्ति सबको दान कर देता, कोई भी आके ले, केवल भिखारी नहीं, कोई भी जरूरतमंद वो लगा देता था एक जगह, बैठता था खुद रोज और जो जिसने मांगा, जो जिसने आवश्यकता बताई, सारी दान कर दी। फिर 5 साल में उसका खजाना भर जाता था, फिर सारा दे देता था। तो ये है प्रजा के प्रति बहुत श्रेष्ठ भावनाएं, ये राजाई संस्कार हैं। सतयुग में हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, पर इन संस्कारों की जरूरत है, क्योंकि देने वाले ही क्या भरपूर हैं। जो दे रहे हैं वही तो भरपूर रहते हैं। जो हमेशा लेने के इच्छुक हैं वो भरपूर रहेंगे या लेने वाले ही रहेंगे? माताओं का क्या इरादा, लेने वाले या देने वाले? आप पक्का सोच लो, प्रेम भी देना है, केवल पैसे की बात नहीं, शांति भी देनी है, सुख भी देना है, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से मधुरता, अच्छी प्रेरणाएं, सबको अच्छी भावनाएं भी देनी है। हम इस बात को रियलाइज करते चलें। बाबा ने उसी मुरली में कहा, बाप अपने बच्चों को देखता है कि ये संसार में चमकते हुए सितारे हैं। बहुत सुंदर बात है ये। और दूसरी बात भी कही, देखो बाबा हमें स्मृति दिलाकर जगाते हैं और हमें जगना है। स्मृति स्वरूप होना एक दिन में नहीं होता, सालों साल लगते हैं। क्या बाबा ने स्मृति दिलाई? तुम वो महान आत्माएं हो जिनका गायन सारा संसार कर रहा है। याद हो आपको, उसी मुरली में था। हम अपनी महानताओं को रियलाइज करें तो नीचे नहीं रह पाएंगे, फिर हमारे विचार महान बन जाएंगे। माताओं में क्या हो जाएगा, ये मेरा परिवार है, ये मेरे 2 बच्चे हैं, उससे निकलकर विशालता आ जाएगी, विशालता आ जाएगी विचारों में, महानता। फिर ये छोटापन, तेरी मेरी, सब ये पीछे रह जाती है। तो हम भी अपने को इसी नजर से देखेंगे, हम संसार में चमकते हुए सितारे हैं। अभी तक हम अपने को नहीं पहचानते, साधारण समझ लेते हैं, छोटा समझ लेते हैं, पुरुषार्थी, मेरे में ये कमी है, ये बात है, अभी ये रहता है। लेकिन हमें इससे बाहर निकलना है। हम संसार में चमकते हुए सितारे हैं, हमारे प्रकाश से ये जग रोशन है। अगर हम न हो तो संसार में अंधकार हो जाए। ये बात बाबा बहुत सुना चुके हैं। हमारे कारण ही संसार में रोशनी है, हमारे कारण ही संसार में चरित्र और पवित्रता बाकी है। पर जहाँ पवित्रता को समाप्त ही कर दिया गया हो, जहाँ पादरी भी न मिलते हो पवित्र रहने वाले, और जिसका प्रचार संसार के बहुत बड़े हिस्से में हो, हाँ उनके यहाँ प्योरिटी थी, हाँ अभी उनके यहाँ प्योरिटी भी थी, हाँ सच्चा प्रेम भी था, दया भाव भी थी, बहुत अच्छी चीजें थी। लेकिन अब क्या रह गया? धर्म बाइबिल में जीवन से समाप्त हो गया। यही बात सब धर्मों के साथ हुई, भारत में भी यही होगा। जो नई पीढ़ी है, बहुतों ने तो गीता का नाम भी नहीं सुना। जो युवक हैं आजकल, उनको धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, धर्म क्या होता है। मंदिर में मम्मी जाती है, वो भी चले जाते हैं कभी कभी, इसके अलावा उनको कुछ पता नहीं। तो कहां पहुंच गए? बिल्कुल नीचे उतर आए ना। हम सबको बाबा ने फिर जगाया है, और जगा के हमारी महानताओं की याद दिलाई है। तुम बहुत महान हो, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारे पुण्य कर्म, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। संसार को आधार के रूप में अब भी शक्ति दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अगर ये भी न हो तो संसार जल के नष्ट हो जाएगा। काम की अग्नि में संसार जल के नष्ट हो जाए अगर हम सब पवित्र आत्माएं यहाँ न हो। तो बाबा ने बहुत बड़ा स्वरूप हमें दिया है, उसी नजर से बाबा हमें देखता है। हम भी अपनी महानताओं में स्थिर रहेंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी दूसरी, करेक्शन नहीं, क्या हो? अगर हम दूसरों को करेक्शन देने में लगे हुए हैं, करेक्शन समझती है माताएं, तुम्हें ये करना चाहिए, ये गलत है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये गलत है, तो हमारा कनेक्शन बाबा से नहीं रहेगा, टूटता ही रहेगा। इसलिए अगर कनेक्शन बाबा से कायम रखना है, योग लगाते रहना है, तो दूसरों को देखने की आदत छोड़ देनी होगी। और हम अधिकार पे आगे चले, हमें अधिकार है बाबा के वरदानों पर, ये भी बहुत सुंदर बात है। और सभी ब्राह्मणों को इसे भी रियलाइज करना चाहिए। बाबा के वरदान किसके लिए? हमारे लिए है ना, ब्राह्मणों के लिए नहीं कहें, किसके लिए? हमारे लिए। तो बाबा के पास जो कुछ है वो उसके लिए तो नहीं ना। वो अगर प्यार का सागर है तो वो अपने को थोड़ा प्यार करेगा, किसे प्यार करेगा? हम सब आत्माओं को। अगर वो सर्वशक्तिवान है तो उसकी शक्ति भी हमारे लिए, वो हमें शक्तियां देकर इस संसार को महान बनवा देता है। अगर वो पतित पावन है, पवित्रता का सागर है, तो अपनी पवित्रताओं हमें देता है और हमसे प्रकृति पावन करा देता है, आत्माओं को पावन करा देता है। ऐसे ही बाबा के पास है वरदान, और वो हमें वरदान देता है। वो तो कोई चीज का पता नहीं, अपने पुरुषार्थ की उधेड़ बुन में, उलझन में बहुत आत्माएं लगी रहती हैं। लेकिन हम बाबा के वरदानों को भी महसूस करें। वरदान दिए हैं बाबा ने, जो वरदानों को वरदान स्वीकार कर लें, उनके लिए वो वरदान बन जाते हैं। और जो उन्हें केवल बाबा के महावाक्य समझे कि ये तो बाबा ने हमें कहा है करने को, उनके लिए वो केवल महावाक्य रह जाते हैं। एक ही उदाहरण ले इसमें, बाबा ने हमें कहा तुम विघ्न विनाशक हो, तुम विजयी रतन हो। अब ये महावाक्य भी हैं बाबा के। ये हमारे स्वमान भी हैं, ये बाबा ने हमें स्मृतियां भी दिलाई हैं, लेकिन ये दोनों वरदान भी हैं। जो इनको वरदान रूप में स्वीकार करे कि मुझे विजय का वरदान है भगवान का, तुम सफलता मूर्त हो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता भी हमारे लिए वरदान रूप में प्राप्त है, जो इन्हें वरदान रूप में स्वीकार करेंगे उनके लिए ये वरदान बन जाएंगे। लेकिन बाबा की एक बहुत सुंदर बात सभी को याद रखनी है, जिसको भी बाबा से वरदान लेने हो, वरदान कौन सी बुद्धि में ठहरते हैं, ये बात सभी ध्यान से सुन लें। बाबा के महावाक्य हैं और ऐसा करके वरदानों को प्राप्त करें, क्योंकि आने वाले जय जयकार और हाहाकार के समय हमारे वरदान ही बहुत बड़ा काम करेंगे, हम उन्हें यूज करेंगे। जैसे अब हम दूसरों को राय देते हैं, मैं भी सोचता हूँ मेरे पास लोग आए, फोन आया, हमने उनको राय दी, भाई बाबा की ये बात कर लो, ऐसा अभ्यास कर लो, तुम्हारी ये समस्या ठीक हो जाएगी। आने वाला समय कैसा हो रहा है कि लोग कहेंगे हमसे नहीं होता, तुम ही कर दो। अब भी आते हैं बहुत लोग, रोज एक व्यक्ति तो मुझे फोन पे कहता ही है, भाई जी हमारे लिए योग आप ही कर दो, हमारा तो लगता नहीं। मैं उन्हें कह देता हूँ ठीक है मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं करता नहीं, मुझे तो भूल जाता है, लेकिन उनकी समस्या हल हो जाती है। वो फिर धन्यवाद भेजते हैं कि आपने बहुत अच्छा योग किया, हम ठीक हो गए। मैंने कहा जिसने किया उसे तो भूल ही गए, मैं तो भूल ही गया था। तो क्या कहेंगी आत्माएं, आप हमें दृष्टि दो, हमारी ये बात ठीक हो जाए, आप हमारे सिर पे हाथ रख दो, आप हमें वरदान दे दो, सफलता का वरदान दे दो। तो हम अभी से वरदानों को अपने अंदर भरे, शक्ति और वरदान दोनों को साथ भरें, और याद रखेंगे वो बुद्धि जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहती है, यानी जो आत्मा लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं उनकी बुद्धि में वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। वरदानों के लिए चाहिए शक्ति और बुद्धि की स्वच्छता। जिसकी बुद्धि स्वच्छ नहीं है, जिसकी बुद्धि में गंदगी बहुत है, जिसकी बुद्धि में तेरा मेरा है या व्यर्थ है या इम्प्योरिटी है, क्रोध है, उनकी बुद्धि वरदानों को धारण नहीं कर सकती। जैसे लोग कहते हैं ना, अब तो ये बात समझाने में हमारे यहाँ बहुत कम रह गई, एक समय था लोग बहुत बहस किया करते थे सर्वव्यापी पे, भगवान हमारे दिल में बैठा है, और हम क्या कहते थे उन्हें, जिस दिल में गंदगी हो वहां भगवान का वास नहीं हो सकता। तो भला तुम्हारे दिल में भगवान कैसे बैठेगा, हम एक अच्छी चीज को भी, एक मूल्यवान हीरे को भी सोने की डब्बी में रखते हैं, हम चांदी का गिलास खरीदने जाएं, चांदी की अंगूठी खरीदें, तो ज्वेलर हमें अच्छी तरह लाल से कागज में एक मखमल की छोटी सी डब्बी में देगा या नहीं देगा। और भगवान जैसी कीमती, सबसे मूल्यवान, सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या तुम्हारे गंदे दिल में बैठेगा। हम कहते थे सोचो जरा, विचार करो, बहस नहीं करो हमसे, विचार करो और फील करो, पूछो अपने से क्या मेरे दिल में भगवान बैठा है। तो वरदान भी उसके दिल में ठहर सकते हैं, उसकी बुद्धि में ठहर सकते हैं, जिसने अपनी बुद्धि को पवित्र किया हो, स्वच्छ किया हो, शक्तिशाली बनाया हो, लंबे काल के ईश्वरीय नशे के द्वारा। सोच लो माताएं, जिसको आप में से वरदान चाहिए वो अपनी बुद्धि को पहले खाली करेंगी, तब तो नया वरदान आएगा ना। पहले ही माल किसी ने बहुत भरा हो, माताओं ने माल भरा है या नहीं, माताओं के पास ज्यादा माल रहता है, तिजोरी में नहीं, कहां, बुद्धि में, उस माल को खाली करना पड़ेगा। दूसरों की गंदगी हम अपनी बुद्धि में क्यों रखें, चिंतन करेंगे, गंदगी दूसरों की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, और परेशान हम चिंतन करेंगे। आज मेरे को एक का फोन आ रहा, छोटी लड़की फोन कर रही, मेरे नाना 82 साल के हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, गुम हो गए, हमारा सारा परिवार परेशान है, मैं क्या करूं। समस्या है ना उनके लिए प्रैक्टिकल। मैंने उनसे पूछा ज्ञान लिया, उन्हें पता नहीं था ज्ञान क्या होता है। कहा क्या कहा भाई जी, मैंने कहा ज्ञान लिया है, नहीं पता उसे, हम समझ गए। मैंने कहा हमारा यहाँ आश्रम है ब्रह्मा कुमारी, वहां कभी गए हैं? नहीं वहां तो नहीं गए, पर मेरी एक मौसी जाती है जयपुर में, उसे कह दूं आपसे बात करे। फिर उसने मेरे से बात की कि भाई वो व्यक्ति है, इसका कुछ और लगता होगा, वो गुम हो गया 82 साल का, कहाँ चला गया पता नहीं चलता। तो ऐसी क्या योग की विधि करें जो वो वापिस आ जाए, चिंता की बात होती है ना। ऐसी चिंताएं संसार में बहुत बढ़ती जा रही हैं। एक बात बहुत बढ़ रही है आजकल माताओं के लिए है वो, बहुतों के पति शराब पीने लगे हैं, शराब की दुकानें भी बहुत खुलती जा रही, और साथ में ये भी लिखा होता है, कुछ लिखा होता है, कुछ लिखा भी होता है उधर, क्या हानिकारक है, और दुकानें भी खूब खुलती जा रही है। सरकारें क्या कर रही हैं, क्राइम भी बढ़ रहा है, लेकिन दुकानों के लाइसेंस भी बहुत दे रहे हैं। एक बहन ने मुझे फोन किया, मेरे पति को कॉलोनी में दुकान नहीं खोलने दे रहे लोग, क्या करूं। मैंने पूछा भाई कॉलोनी वालों को दुकान खोलने से क्या अर्जा, मुझे लगा कुछ गड़बड़ होगी। मैंने कहा कि इस चीज की दुकान है तो माता जी टाल मटोल करें। मैंने कहा तुम साफ साफ बताओ तो मैं कुछ बताऊं तुम्हें। कहा बियर बार का लाइसेंस मिला है शराब का। तो मैंने कहा कॉलोनी वाले सोचेंगे ना हमारे यहाँ गुंडे आएंगे सारा दिन, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा बाबा की मनाही है ये पाप के धंधे करने की, इसलिए मैं तो इसके लिए आपको राय नहीं दे सकता, न योग इसमें आपका सफल होगा। योग पुण्य कर्मों के लिए है, पाप कर्मों के लिए नहीं। बेचारे ने रख दिया फोन, क्या करूं भाई जी। मैंने कहा शराब पिलाने का धंधा करना ये पाप है, हमें पता साकार में बाबा ने कईयों को कहा था, धंधे परिवर्तन करो अपने, क्योंकि पाप की कमाई क्या होगी, पाप में जाएगी। अभी मैं सुना शिवानी बहन ने डॉक्टर्स को साफ साफ बोला कि तुम गरीबों से अगर पैसा लेते हो बहुत गलत तरीकों से, काम कुछ नहीं है, बहुत सारे वो लिख दिए, ये चेक करा के टेस्ट, और हाँ वहां से कराओ, वहां जहां डॉक्टरों की पहचान है। और मुझे एक डॉक्टर बहन ने बताया उसकी पैथोलॉजी है कि हमें उन लोगों को 50% 60% देना पड़ता है। तो ये सोच रही थी मैं क्या करूं, मुझे तो गरीबों की सेवा करनी, मैं इसलिए पैथोलॉजिस्ट बनी हूं, MD किया उसने, मैं क्या करूं। तो मैं सुना शिवानी बहन कह रही थी अगर ऐसा पैसा तुम कमाओगे तो ये पैसा गलत तरीकों से ही नष्ट होगा। बिल्कुल, ये सभी माताओं को भी समझ लेना चाहिए, गलत तरीकों से कमाए गए पैसे से अगर बच्चों की पालना हो रही है तो बच्चे, मैं माताओं से बुलवाना चाहता हूं, बच्चे चरित्रवान नहीं होंगे, गलत रास्तों पे जाएंगे, आपके नाक में दम कर देंगे। मैं अनुभवों से जानता हूं क्योंकि मुझे रोज 5-7 फोन माताओं के बच्चों की समस्या को लेकर आते हैं। बच्चे दुखी हो रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, कुछ नहीं सुनते, कोई शराब पी रहा है, कोई गलत मार्ग पे जा रहा है, कोई बुरे संग में जा रहा है, कोई कहीं फंस रहा है। इसका एक कारण गलत पैसे से की गई पालना भी है। अब कलयुग का अंत आ गया, यहां ईमानदारी का तो कुछ रहा नहीं। ईमानदार व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट होगा, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को सबसे ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए लोग समझते हैं गलत मार्ग पे चलना ही ठीक है शांति के लिए। वो कल परसों से टीवी पे एक चीज आ रही, मैंने भी जरा सा खोला, दुर्गा शक्ति कोई IAS SDM थी, उसने पता नहीं क्या निर्णय दे दिया था, तो सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया, उस पर बहुत चर्चा चल रही है। तो मैं जरा सा ही सुना, मेरे पास 10 ही मिनट थे, तो वो बता रहे थे पत्रकार फटाफट कि यहाँ का वो ऑफिसर फलानी जगह का, एसपी फलानी जगह का, ये उन्होंने ईमानदारी से काम किया तो उन्हें ईमानदारी की सजा मिली है। और एक अखबार में चित्र भी बनाया था, नेताजी खड़े हैं और उनके जूतों के नीचे एक व्यक्ति है, नेताजी के चित्र पे लिखा था बेईमान और नीचे वाला जो जूतों के नीचे है उस पे ईमानदार। अरे पत्रिका में था ना आजकल, में मेरा भी ध्यान चला गया, बड़ा सुंदर सा चित्र बना, कार्टून बनाते हैं ना। तो कलयुग की ये पहचान हो गई कि ईमानदार सत्य लोग दुखी, और वही हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, वही चल रहा है, सारा धंधा ही झूठ का है, भोजन भी झूठा तो बिजनेस भी झूठा, ये सब चल रहा है, इसलिए झूठी दुनिया। बाबा ने इसे कांटों का जंगल कहा आज भी, और इसका मालिक कौन? रावण कहा। तो ये समाप्त हो जाएगा झूठ का धंधा, इसलिए हमें जितना हो सके पवित्रता का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग, सच्चाई का मार्ग अपनाना है, ताकि आपके बच्चे भी चरित्रवान बने, आपको सुख दे। उन्हें धनवान बनाने की बजाय माताओं को सोचना चाहिए, उन्हें चरित्रवान बनाना है, उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं। माताएं अपने बच्चों को पढ़ाना तो बहुत चाहती हैं, लेकिन ये बहुत कम सोचती हैं कि उन्हें अच्छे संस्कार भी देने हैं। पढ़ाना तो ठीक है, कंपटीशन का जमाना आ गया है, हर माँ बाप चाहता है उनकी लड़की भी बहुत होशियार हो, और उसको पढ़ने की इच्छा नहीं है तो परेशान माँ बाप हैं, लड़की खुश है, माँ बाप परेशान हैं। तो थोड़ा समझदारी से बच्चों को चरित्रवान बनाना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, उनकी पालना और ढंग से करना, ताकि उनका भविष्य सुंदर हो, ये सभी को चिंतन करना, माताओं को विशेष रूप से। तो सभी अधिकारी सत्कारी, सत्कार मिलेगा ना फिर, निराकारी और निरंकारी पे तो सब जानते हैं, इस पे बहुत ध्यान देंगे। अहंकार जहां कहीं भी है सूक्ष्म रूप से हमें चेक कर लेना है, और निरंकारी बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप होगा जीवन निर्मल, बुद्धि दिव्य। जो व्यक्ति संपूर्ण निरंकारी बन गया, निर्मलता आ जाएगी जीवन में, बोल में भी, दृष्टि में भी, व्यवहार में भी, और बुद्धि में दिव्यता आ जाएगी। ये होंगे राजाई संस्कार। ओम शांति।